रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़ जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है और आज हम अंदाज़ जहां में हिज़्बुल्लाह की तवानाई और लबनान की सलामती के ज़ेर उनवान गुफ्तगू करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहां। दुनिया जानती है कि गैर कानूनी सहूनी हुकूमत मशरक़ वस्ती में बदी, बदमनी और जारहियत का महवर है, बल्कि इसका वजूद जारहियत और गासिबाना कब्जे पर ही उस्तवार है। साम्राज्य ताकतों की साजिश के नतीजे में फलस्तीनियों के कत्लेआम और सरजमीन फलस्तीन पर गासिबाना कब्जे के जरिए गासिब सहूनी हुकूमत गैर कानूनी तौर पर कायम की गई। आसपास के तमाम अरब मुल्कों पर कब्जा करके अपनी कलमरो को तोसी देना और ग्रेटर इसराइल वजूद में लाना सहूनियों का बुनियादी हदफ था। इस हदफ की तकमील के लिए गासिब सहूनी हुकूमत ने हमेशा जारहियत और फलस्तीन के पड़ोसी मुल्कों पर कब्जे की सियासत पर अमल किया। गासिब सहूनी हुकूमत ने इसी हदफ के तहत जुनूबी लबनान पर भी कब्जा किया था, लेकिन हिजबुल्लाह की मुजाहदत के नतीजे में उसको वहां से निकलना पड़ा। अगरचे अब भी लबनान का कुछ इलाका सेहूनी हुकूमत के कब्जे में है, सेहूनी हुकूमत ने हिजबुल्लाह को अपने जारहाना अजायम और गासिबाना मंसूबों की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझा और इसको खत्म करने के लिए 2006 में लबनान पर चौतरफा हमला शुरू किया, जो 33 दिन तक जारी रहा और गासिब सेहूनी हुकूमत की शर्मनाक शिकस्त पर खत्म हुआ। यह गासिब सेहूनी हुकूमत की पहली शिकस्त थी। हिजबुल्लाह ने सेहूनी हुकूमत की फौज के नाकाबिले शिकस्त होने का भरम तोड़ दिया। हिजबुल्लाह के बाद गजा के फलस्तीनियों ने 22 रोजा जंग में सेहूनी हुकूमत को एक बार फिर शर्मनाक शिकस्त से दोचार किया और सारी दुनिया ने इस बात का एतराफ किया कि सेहूनी हुकूमत की यह शिकस्त 33 रोजा जंग में हिजबुल्लाह से उसकी शिकस्त का नतीजा है। इस दरमियान अमरीका और सेहूनी हुकूमत ने लबनान के अंदर अपने जरखरीद एजेंटों के जरिए लबनान हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की साजिश चलाई, जिसमें उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। और न सिर्फ यह कि हिजबुल्लाह को वो कमजोर न कर सके, बल्कि हिजबुल्लाह रोज बरोज पहले से ज्यादा ताकतवर होती रही। यहां तक कि रवा महीने के अवैल में सेहूनी हुकूमत ने एक ड्रोन तैयारा डिमोना एटमी तनसीबात के करीब मार गिराने का ऐलान किया। इसी के साथ यह बहस और इस बात की तहकीकात शुरू हो गई कि बगैर पायलट का यह तैयारा तमाम रुकावटें उबूर करके मकबूजा फलस्तीन में इतने अंदर तक कैसे पहुंच गया और यह कि यह ड्रोन किसने भेजा था कि हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने यह ऐलान करके कि यह ड्रोन हिजबुल्लाह ने भेजा था, सेहूनी और अमरीकी खेमे में हलचल मचा दी। जहां सेहूनी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों पर इस ऐलान के बाद सख्त वहशत तारी हो गई, वहीं लबनान के दोस्तों, लबनान की हुकूमत और फलस्तीनियों ने हिजबुल्लाह की इस कामयाबी को अपनी कामयाबी करार दिया। लबनान के सदर मिशेल सुलेमान ने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह की ताकत और तवानाई लबनान की हिफाजत की जामिन है। लबनान के वजीर तरक्यात मोहम्मद फनीश ने सेहूनी हुकूमत के मुकाबले में दिफाई ताकत को तहरीक मुजाहमत हिजबुल्लाह और लबनान का मुसलमा हक करार दिया और कहा कि ऐसी हालत में कि जब गासिब सेहूनी हुकूमत मुसलसल लबनान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रही है, अपनी दिफाई ताकत बढ़ाना हिजबुल्लाह का मुसलमा हक है। हमास के अहम रहनुमा मोहम्मद अजहार ने हिजबुल्लाह की इस अहम पेशरफ्त की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह ने गासिब सेहूनी हुकूमत के मकबूजा इलाकों में अहम और हसास रुकावटों के बावजूद एटमी तंसीबात तक ड्रोन भेजकर दुनिया पर साबित कर दिया कि सहूनी हुकूमत अंदर से कितनी कमजोर है, और अगर इसने दोबारा लबनान पर जा रहियत की तो उसको 33 रोजा जंग से ज्यादा शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं लंदन स्टूडियो, जहां लंदन में मुकीम बरे सगीर के मुमताज दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगु का आगाज करते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम
जनाब। दिफाई मैदान में हिजबुल्लाह की ताजा पेशरफ्त के बारे में आपका तज्जिया क्या है?
देखिए, ये ड्रोन जो है इसका इसराइल में जाना और 3 घंटे इसराइल में वो सफर करता रहा, और इस दरमियान में यहाँ के संडे टाइम्स ने लिखा है कि उसने वहाँ पर उनकी मिसाइल साइट्स, उनकी एयरफील्ड्स, उनकी जो प्रिपरेशन हो रही है अमेरिका और इसराइल की जॉइंट फौजी मश्क, और साथ ही साथ उसने दमुना में जो इनके रिएक्टर्स हैं उन सबको उसने फोटोग्राफ किया और उसको वापस भेजा। तो 3 घंटे वो सफर करता रहा और अमेरिका और इजरायली तमाम अरबों डॉलर खर्च करके उन्होंने आयरन डोम और दूसरे तमाम हथियार वो मशीनें लगाई हुई थी कि कोई ऐसा जहाज आए तो हम उसको पहचान ले, उसको नहीं पहचान पाए। और जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि वो ये जो ड्रोन आया था इसके ऊपर जो जिल्द थी उसको इजरायली समझ ही नहीं पाए जो है, और उसके बाद भी जब उन्होंने उसको गिराने की कोशिश की तो पहला जो उनका हमला था और पहला जो उन्होंने स्टेप लिया वो फेल हो गया, दूसरे स्टेप में वो उसको गिरा पाए। लेकिन वो ये ड्रोन जो है वो 200 मील सफर करता रहा, 100 मील समंदर के अंदर से होता हुआ वो जनूबी फलस्तीन जो है ऑक्यूपाइड फलस्तीन और में ये दाखिल हुआ, और इस तरह उसने ये किया। इससे 2-3 बातें जाहिर होती है। एक बात ये है कि यूनिटी, एक जहती ईरान में और लबनान में बढ़ रही है, और ये जरूरी है कि यूनिटी कायम रहे तमाम मुसलमान मुल्कों में, क्योंकि वो एक के बाद एक मुसलमान मुल्कों पर को निशाना बनाते हैं और उनको ज़ोरकोप करते हैं, इसलिए ये यूनिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी, ये जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है ये कुछ मुल्कों के पास है और ज़्यादातर तो ये एडवांस मुल्क हैं, लेकिन साथ ही साथ ब्राज़ील, ईरान और हिंदुस्तान के पास भी है। तो ईरान उन सफ़ों में है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि अब इज़राइल की जो मनमानी थी और जो मनापली थी, जो उसकी था कि सिर्फ इज़राइल जो है वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है, वो अब मसला जो है नहीं रहा। इसी बात यह है कि इज़राइल खुद जो है उसके अंदर इस पर बहुत तफ्तीश पाई गई, यहाँ तक कि कमांडर चीफ जो है एयरफोर्स का मिस्टर काविश, उनको नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो इस ड्रोन को नहीं पहचान पाए थे। तो एयरफोर्स कमांडर चीफ जो था उसको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो नहीं इस ड्रोन को पहचान पाया था जो है। तो ये जाहिर करता है कि इज़राइल के अंदर जो भी वो बाहर कहें, अंदर जो है वो बे इंतहा बेचैनी इससे पाई जाती है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
पाई जाती है। और जो बहुत अच्छी बात यह है कि लेबनान ने इसको पूरी तरह सपोर्ट किया है, यानी अदनान मंसूर जो कि लेबनान के वजीर ख्वाजा हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हिज़्बुल्लाह का नहीं है बल्कि तमाम लेबनान का ये ड्रोन है और हम इसकी पूरी हिमायत करते हैं। ये और इस ड्रोन ने कोई यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को वायलेट नहीं किया है, क्योंकि इसराइल तो बराबर ड्रोन भेजता रहा है लेबनान में, तो इसलिए कोई इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की खिलाफवर्जी नहीं है ये।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और नाज़रीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां हिंदुस्तान के सीनियर तजिया निगार शकील शमसी साहब मौजूद हैं। शमसी साहब अस्सलाम वालेकुम। शमसी साहब, हिजबुल्लाह ने सहूनी हुकूमत की कलमरों के अंदर बगैर पायलट का अपना तैयारा भेजा
जी।
और ये ड्रोन हिजबुल्लाह का 3 घंटे तक मकबूजा फलस्तीन के अंदर परवाज करता रहा, बहुत सी अहम रुकावटों को अबूर करके डिमोना एटमी तनसीबात तक पहुंच गया और इसराइली इदारे इसका पता न लगा पाए। आपका तजिया क्या है इस बारे में?
देखिए, ये एक ऐसी हैरान करने वाली खबर थी कि जिसका कोई फहमो गुमान में भी नहीं था कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी ड्रोन जा सकता है या हिजबुल्लाह भी के पास भी ड्रोन की तकनीक आ गई है या ड्रोन उसको मिल गया कहीं से। ये बिल्कुल एक ऐसी बात थी जिस पर कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और जब इसराइल की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हमने एक ड्रोन गिरा दिया, 6 तारीख का ये वाकया है गालिबन, और 6 तारीख को जब उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ इसराइल ने कि हमने एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल को मार गिराया है, ड्रोन है जो मेडिटेरियन क्रॉस करके आया था, तो जब ये बयान आया तो उस वक्त इसराइल ने कुछ बहुत ज्यादा इस पर रिएक्शन देने की कोशिश नहीं की और इसको बहुत अंडर प्ले करने की कोशिश की। और आप देखिए, कई दिनों तक बड़ी खामोशी रही, यानी कि 6 तारीख से 10 तारीख तक बहुत ही खामोशी रही और कोई इस पर गुफ्तगु ही नहीं की गई। अगर हालांकि इसराइल में किसी जहाज का चला जाना, इसराइल की तारीख में 56 साल की तारीख में, 64 साल की तारीख में आज तक नहीं हुआ कि उसकी एयर स्पेस का वायलेशन किसी मुल्क ने किया हो। यह पहली मरतबा हुआ कि इसराइल की एयर स्पेस का वायलेशन करने में हिजबुल्लाह कामयाब हुआ और इसराइल उसको पी गया। सबसे दिलचस्प बात तो यह थी कि इसराइल पी गया, खामोश रहा उसके ऊपर, उसने बोलना मुनासिब ही नहीं समझा। लेकिन जब हिजबुल्लाह ने क्लेम किया तो उन्होंने उस पर उसको अंडर एस्टिमेट करके पेश करने की कोशिश की और उसको बताने की कोशिश की। हालांकि हिजबुल्लाह का कहना यह है कि उसने जिस मकसद के लिए जहाज को भेजा था वो मकसद पूरा हो गया था और उस जहाज ने करीब 2.5-3 घंटे की फुटेज भेजी उनके पास जो उन्होंने रिकॉर्ड किया, जिसमें नगावे में और जो उनका डेमोना है दोनों जगह पर जहां पर अमेरिका और इसराइल की ज्वाइंट मैनोवर्स चल रहे हैं वहां के ऊपर पहुंचा वो जहाज और उसने जो जिस काम के लिए भेजा गया था। तो पहली बात तो इसराइल की नाकामी की यह थी कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाया उसको और जब डिटेक्ट किया तो बहुत देर हो चुकी थी और फिर जब गिरा भी लिया तो उसके बाद भी इसराइल को यह कहते शर्म आ रही थी कि यह हिजबुल्लाह का जहाज है। हालांकि उनको पहले घंटे से मालूम था कि किसने भेजा होगा। ईरान, सबसे अच्छी बात यह जो इसमें आई कि हिजबुल्लाह ने यह बात कही कि यह टेक्नोलॉजी उनको ईरान से मिली, यह ड्रोन जो है ईरानी तकनीक से बना हुआ ड्रोन है, रूसी तकनीक से बना हुआ नहीं है। और आपको मालूम है कि ईरान अभी इससे पहले भी ईरान ने जिस तरीके से ड्रोन को अपने कब्जे में लिया था, अमरीकी ड्रोन जो उसके इलाके में आ गया था और उसकी जो डिकोड किया था उसको जिस तरीके से, वो भी तारीख में पहली मरतबा हुआ था कि किसी जहाज को सही सालिम अपने हवाई अड्डे पर उतार लिया गया और उसकी एग्जीबिशन भी जगह जगह लगाई गई ईरान में। तो ईरानियों ने जो ड्रोन की तकनीक इनको फराहम कर दी और जिसके ऊपर लबनानियों ने कुछ और काम किया जैसा कि उनका कहना है और उसके बाद उसको भेजा। तो ये बजाहिर तो वह छोटी खबर लग रही है लेकिन इसके असरात बहुत दूर तक गए हैं और इसराइल में जितनी घबराहट है आप उसकी घबराहट का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि कल ही मंडे को सिक्योरिटी काउंसिल की महाना मीटिंग में जो होती है उसमें वहां के प्रोफेसर ने, जो उनका नुमाइंदा है इसराइल का, जो नुमाइंदा प्रोफेसर है वहां पर सफीर है, उसने बहुत ही जली कटी तकरीर की एक तरीके से इस ड्रोन हमले के बाद और उसने कहा कि हिजबुल्लाह के पास 50,000 मिसाइल्स आ गई हैं और उसने स्टोरेज कर लिया, 50,000 मिसाइल्स का उसने स्टोरेज कर लिया है 33 दिनों की जंग के बाद से। तो अब आप ये बात सोचिए कि इसराइलियों में इस वक्त जो खलबली है उसका अंदाजा वहां हुआ यूएनओ में, जो उनके सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरीके से उसके सफीर ने कहा और उसने ये साबित करने की कोशिश की कि हिजबुल्लाह जो है कोई दहशतगर्द तंजीम है, क्योंकि यही वो कोशिश कर रहा है बहुत जमाने से, जबकि दहशतगर्द असल में सहूनी हुकूमत है। लेकिन हिजबुल्लाह का पूरा रिकॉर्ड है कि हिजबुल्लाह ने कभी भी शहरी इलाकों पर हमला नहीं किया, हिजबुल्लाह ने कभी भी बेगुनाह मुसाफिरों का अगवा नहीं किया, किसी जहाज के लोगों को अगवा करके उनको घरों में नहीं बिठा कर रखा बंधक बना के, कभी जरे तावान नहीं मांगा, कुछ नहीं किया। उसने हमेशा आंख में आग डालकर जालिम से बात की और जालिम के अंदर घर में घुसकर हमला किया। इससे पहले भी आपको जो 33 रोजा जंग थी जिसमें पहली मर्तबा इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ा मुसलमानों के हाथ। अब से पहले जितनी भी जंगें अरबों और इसराइल के बीच में हुई थी उसमें मुसलमान हारे थे। ये सिर्फ पहला मौका था कि जिसमें हिजबुल्लाह को फतह मिली थी। और उस वक्त भी जो उसने टेक्नोलॉजी मिजाइल लॉन्चर्स के सिलसिले में इख्तियार की थी वो मिजाइल लॉन्चर्स की टेक्निक किसी के पास नहीं थी कि किस तरीके से उसको शिफ्ट कर देते थे। और इसराइल के जो सेंसर्स थे वो पता नहीं लगा सकते थे कि ये कहां से लॉन्चर्स मार के कहां चला गया। तो इस तरीके की टेक्निक हासिल कर लेना और इतनी ज्यादा परेशानियों के बावजूद, कोई हिजबुल्लाह का अपना मुल्क नहीं है, हिजबुल्लाह तो उस मुल्क का एक पार्ट है, जनूबी लबनान है जो लबनान का एक हिस्सा है, लबनान में एक सेकुलर गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट नहीं है वहां पर। उसके बावजूद उन लोगों ने जिस तरीके से तकनीक हासिल कर रहे हैं और जिस जापिशानी के साथ ये कर रहे हैं, यकीनन उससे एक खलबली मची। और ये जो ड्रोन का वाकया हुआ है, ड्रोन का जो अटैक हुआ है
जी,
ये असल में सिर्फ ये हिजबुल्लाह शायद ये दिखाना चाहता था कि मियां की जूती मियां के सर, कि हम तुम्हारी टेक्नोलॉजी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, जो अमरीकी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और जो तुम ये समझते आए हो कि तुम दादागिरी करते रहोगे और तुम्हारे जहाज यहां से ऊपर से जाते रहेंगे, तो तुम्हारी भी फिजाएं ऐसी नहीं है कि जिनकी खिलाफ वर्जी कोई ना कर सके। एक ताकत तो वहां पर कम से कम मिडिल ईस्ट में ऐसी है जो तुम्हारे बिल्कुल करीब में है, और एक वो ताकत है जो तुमसे थोड़ा दूर पर है, तेहरान में बैठी है, लेकिन वो ताकतें तो हैं कि जो तुम्हारी फिजाओं को चीर कर अंदर आ दाखिल हो सकते हैं। ये बात तो उन्होंने साबित कर दी है इस ड्रोन अटैक से।
जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब। जनाब गासिब सेहूनी हुकूमत की फौज को नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था, लेकिन 2006 में 33 रोजा जंग में हिजबुल्लाह से शिकस्त के बाद उसका यह भरम खत्म हो गया। अब हिजबुल्लाह ने मकबूजा फलस्तीन के अंदर ड्रोन भेजा जो सेहूनी हुकूमत की कायम करदा तमाम रुकावटों को अबूर करके अहम तनसीबात के करीब तक पहुंच गया और सेहूनी हुकूमत को पता भी न चल सका। इससे क्या यह साबित नहीं हो जाता है कि सेहूनी हुकूमत, जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो इतने मजबूत हिसार के अंदर है कि दुनिया की कोई भी ताकत उस हिसार को तोड़ के मकबूजा फलस्तीन के अंदर दाखिल नहीं हो सकती है, ये भी सिर्फ एक दावा है?
देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं
जी।
मसला यह है कि इसराइल इतना मजबूत नहीं था, जो कमजोरी थी वो मुसलमानों में थी, क्योंकि उनमें ना यूनिटी थी, ना उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना उन्होंने पूरे अपने को पूरी तरह तैयार किया था इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। इसलिए हिजबुल्लाह ने पहली मर्तबा दिखाया कि टेक्नोलॉजी और अज़्म और यूनिटी के साथ वो बड़ी सी बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। ये ड्रोन जो था ये शाहिद 129 साख्त का ईरानी बना हुआ था, जिसको हिजबुल्लाह के टेक्नीशियंस ने उसको असेंबल किया और उसको फायर किया। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल ने अपने एयरफोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल गाविश को उनकी नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वो पहली बार है कि वो उसको पहचान नहीं पाए और उनके जो वो थे रेडार्स जो थे, और दूसरी जब उन्होंने एयरफोर्स को हुक्म दिया कि इसको मार गिराया जाए, तो पहली जो पहला जो हमला था वो नाकाम रहा। इस बात से ये बात साबित हो गई कि इसराइल जो है वो इतना पावरफुल नहीं है इतना जितना लोग उसको समझते थे और जो उसने प्रोपेगेंडा कर रखा था। अभी तक ड्रोन जो थे वो मेनली अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है, खासकर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, यमन में, सोमालिया में, तमाम मुसलमान मुल्कों में, और उससे हजारों मर्द औरतें और बच्चे जो है वो लुक़्मे अजल बन गए, और मुसलमानों ने उनके खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया कहीं पर भी। ये पहला मौका है कि ईरान की टेक्नोलॉजी ने ये दिखाया कि हम भी टेक्नोलॉजी में आपसे कम्पीट कर सकते हैं। और जैसा कि ईरानी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो मुसलमानों की हिफाजत और उनके मुल्कों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ये बहुत बड़ा स्टेप है, इसका अंदाज़ा जो है वो लोगों को नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि पहले इसराइल ने इसको कोशिश की कि इसको किसी तरह कम करके दिखाया जाए, लेकिन जब मग़रिबी अखबारों ने और टीवी ने ये दिखाना शुरू कर दिया तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। और अभी मैं पढ़ रहा था आज के पर्चे में कि एक इसराइली ऑफिसर का ने कहा है कि भाई हम कैसे हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट्स और ड्रोन का मुकाबला कर सकते हैं जब हम एक ड्रोन को नहीं रोक पाए हैं, तो हम कैसे उनके हजारों रॉकेट्स को रोक सकते हैं इसराइल में आने से। तो ये मैं जाहिर करता है कि इसराइल में काफ़ी खलबली मच गई है इससे जो है, और इससे दो तीन बातें होंगी। एक तो इसराइल में खलबली बढ़ेगी, दूसरी तरफ मुसलमानों को एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिलेगा, एक बहुत बड़ा हिम्मत बढ़ेगी उनकी कि भाई अगर ये हो सकता है तो दूसरे मुसलमान मुल्क भी ये कर सकते हैं मिल करके जो है। लेकिन ज़रूरी इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम मुसलमान मिल करके जुड़े रहें और उसके साथ ये करें। एक अखबार ने अभी लिखा है यहाँ कि अगर ये टेक्नोलॉजी और ये मिसाइल जो है, जिसका नाम अयूब था बाय द वे, वो अगर हिजबुल्लाह के पास पहुंच सकता है तो ये सिर्फ वक्त का मसला है कि ये मिसाइल जो है हिजबुल्लाह हमास को भी दे देगा। ये देर नहीं लगेगी, इसमें कुछ महीने कुछ एक आध साल लग जाए, लेकिन हमास के पास भी हिजबुल्लाह ये टेक्नोलॉजी जो है दे देगा उनको। तो ये इसराइल के लिए आसान नहीं होगा कि इस टेक्नोलॉजी को वो रोक सकें उस इलाके में जो है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका फराहम करती है कि तमाम मुसलमान इसके ऊपर यूनाइट हों।
जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार डॉक्टर फारूक हसना साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम जी।
जनाब, हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन भेजा है इसराइल के अंदर, और वो वहाँ इसराइल के अंदर 3 घंटे तक हिजबुल्लाह का ड्रोन परवाज करता रहा और वहाँ से अहम तस्वीर लेके वो हिजबुल्लाह को भेजता रहा, और इसराइली इदारे इसका पता ना लगा पाए, इस बारे में आपका तज्जिया क्या है?
जी बिल्कुल, आपने भेजा का तस्वीरों की जो आपने बात की, चूंकि ये जो पायलटलेस प्लेन भी इनको कहा जाता था पहले, अब इनको ड्रोन कहा जाता है, ये इस्तेमाल होते रहे हैं जासूसी के लिए, यानी कि वो मालूमात हासिल करने के लिए। ये तो अमेरिका ने अब आके इसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तो इसमें हमें 2-3 चीजें हैं वो हमने देखनी है। एक तो ये है कि अमेरिका ने ही ये ड्रोन इस्तेमाल करके, जिसका कोई बैन अल-अक़वामी कानून के तहत ये नहीं आता, लेकिन वो बतौर जंगी हथियार उसको इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ा खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए कि उसका ओरिजिन पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आया। अगर दूसरे कोई जहाज आए या वैसे आप बम्बारी करें तोपों के जरिए, तो वो तो पता चल जाता है कहाँ से हुआ है, तो इसका पता नहीं चलता। तो इसलिए उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी, बहुत हल्कों की तरफ से कहा भी जा रहा था कि अब वक्त आ गया है कि ये ड्रोन जो है, ये पायलटलेस प्लेन है, इनके ऊपर कोई कानून साजी की जाए, कानून बनाया जाए, और बतौर जंगी हथियार, लेकिन बतौर जासूसी जो आला है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, सवाए इसके कि वो अगर किसी मुल्क के हदूद में आए तो वो उसको देख लें तो उसको वो गिरा लें, क्योंकि उसमें पायलट तो होता नहीं है, कोई इंसान तो होता नहीं है, मशीन से चलते हैं। एक तो उसका ये पहलू है, कहने का मेरा मकसद ये है कि हिजबुल्लाह ने ये जो किया है, ये कोई उन्होंने बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की, इसलिए कि वो अमरीका ने ये रीत डाली है, बल्कि उन्होंने तो रीत डाली है वो उसके लिए जंगी हथियार के तौर पर, ये तो सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए वो था। दूसरी बात इससे हमें ये पता चलती है कि जो अभी हमारे भाई कह रहे थे, देखो पिछड़ा तौर पर मेरा भी शुरू से नुकता नजर ये रहा है कि ये इसराइल इतना मजबूत नहीं है जितना इसको बढ़ा चढ़ा कर एक जो इनकी यहूदी लॉबी है वो पेश करती है। दूसरी कि अमरीका, अब देखिए सबसे ज्यादा इमदाद लेने वाला अमरीका से मुल्क इसराइल है, चाहे वो नकद हो पैसा या जंगी हथियार हो और या कोई टेक्नोलॉजी भी हो, तो इसलिए। और जो अरब, ये भी भाई ने ठीक कहा कि जो अरब फौजें थी वो इनसे शिकस्त खाती रही 67 की वॉर में, 73 में चली इन्होंने कुछ बेहतर किया था, इतना बेहतर नहीं किया था। तो सबसे पहले इनको जरूरत पड़ी थी जब हिजबुल्लाह के ऊपर इन्होंने हमला किया था, और हिजबुल्लाह का सारी दुनिया ने देखा कि CNN के कैमरे लगे हुए हैं और उनको कहा जा रहा था कि हम एक दिन में 25 किलोमीटर चले जाएंगे, तो उसने तंग आके कहा कमेंटेटर ने कि 4 दिन हमें हो गए, ये तो 1 इंच नहीं आगे से हिल रहे इजरायली फौजी। तो वहाँ ये एक्सपोज हुए थे खासे के, क्योंकि एक मुल्क भी नहीं है और वहाँ के अवाम हैं जो लबनान के, उन्होंने इनका टक्के मुकाबला किया था, तो इनकी कैजुअलिटीज भी बहुत हुई थी वहाँ पे इसराइलियों की भी। अंदाजन बमबारी की, तो वहां से एक्सपोज हो गए थे कि ये इनवेंसिबल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नाकाबिले शिकस्त नहीं है, अगर इनके साथ सही तरह से आप डील करें तो ये वो चीज नहीं है जो हवा इन्होंने बना के पेश किया हुआ है अमरीका मीडिया ने और इन्होंने खुद भी। अब हिजबुल्ला ने ये जो ये भेजा अपना ड्रोन कह लीजिए, पायलटलेस प्लेन कह लीजिए, जो भी भेजा और उसने काम किया अपना, और एक किस्म का ये इनको ये भी बता रहा था कि आप हमें आप इनविंसिबल नहीं हैं, आप जो हैं हम हमारे पास भी इतनी अकल है, हमारे पास भी इतनी महारत है, जैसे अभी बात की गई ईरान के पास भी है। हिजबुल्ला वाले खुद भी बहुत फाल हैं, बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, बहुत और वो हिम्मत से मुकाबला करते रहे हैं, और उनके अपने तालीम की शरह भी बहुत ज्यादा है, उनके टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं और जो टेक्निकल मामला हैं उसमें वो खासे आगे हैं। तो ये एक मैसेज ये भी था, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसराइलियों पर ये बावर करवाएंगे कि आप जो इस तरह नहीं है कि आप आगे आएंगे और कुचलते जाएंगे सबको और दूसरा कुछ नहीं कर सकेंगे, तो फिर इसराइल को सोचना पड़ेगा कि इस इलाके में हमें इंसाफ देना होगा, जहाँ जहाँ हमने नाइंसाफियां की हैं, जहाँ हम ज्यादती कर रहे हैं वो हमें अब देख कर करनी होगी, इसलिए कि उसका फिर जवाब भी इस तरह का आ सकता है। तो ये एक ऐसा पैगाम है जो मैं कहूँगा कि जिसकी जरूरत भी थी और जिसको ये भी बावर कराना उन लोगों हल्कों में खास तौर पर जरूरी था जो इसराइल को ही सब कुछ समझते हैं और कुछ अरब मुल्क भी हैं, कुछ दूसरे ममालिक भी हैं, तो उनको भी ये बताना था कि इस किस्म की ऐसी कोई चीज नहीं है, और अगर एक ग्रुप है हिजबुल्ला वो उसके पास स्टेट की पावर भी नहीं है उस तरह जिस तरह के दूसरों के पास होती है, लेकिन उसके एलाइज हैं, सबको हक है, अगर उसका अमेरिका एलाई है, यूरोपियन एलाइज है इसराइल का, हिजबुल्ला को भी हक है कि वो अपने अपने जो एलाइज हैं वो बनाए और जहाँ उनके दोस्त हैं वो उसकी मदद करें, अगर उनकी मदद अमरीका कर सकता है, जर्मनी कर सकता है, बरतानिया कर सकता है इसराइल की, तो हिजबुल्ला के भी हामी है बहुत से इस दुनिया में, जबकि खास तौर पर वो हक पर हैं। ये तो बातिल है, ये जो ज्यादतियां करते हैं, जिस तरह इन्होंने हिजबुल्ला के साथ लड़ाई की, फिर जिस तरह उन्होंने गाजा में जाके बच्चों को और औरतों को वैशियाना बीमारी से मारा, वो भी सारी दुनिया ने अपने घरों में बैठ कर टेलीविजन स्क्रीन पर देखा। तो इस तरह हिजबुल्ला के दोस्त हैं, और जो भी और दूसरा मैसेज ये भी था कि अगर इन्होंने ईरान के साथ, जो इनको बहुत शौक आया हुआ था पिछले चंद महीनों में, अब ठंडा पड़ गया है, या बार बार ये कहा जा रहा था कि हम हमला करेंगे, ये करेंगे, देखिए एक जो सॉवरन मुल्क होते हैं वो इस किस्म की बातें नहीं करते, जिस तरह के इसराइल कर रहा था, जिस तरह के वो पूरी दुनिया के ऊपर उनका कब्जा है, हालांकि वो नक्शा अगर आप दुनिया का देखें वो नजर भी नहीं आते कहाँ है, तो वो ईरान पे हमला करते हैं कि अपनी मर्जी से करेंगे, ये करेंगे, जैसे कि कोई बात ही नहीं है, हमला किया चुप करके बैठ के, ऐसे तो नहीं होता दुनिया के मामलात में। तो वो भी उनके पैगाम था कि देखिए ईरान के भी साथी हैं, ईरान के भी वहाँ पे एलाइज हैं, और उनकी भी पहुंच जो है या रीच है इतनी है कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर वो आपके खिलाफ ही कार्रवाई कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो यानी एक ये भी इस किस्म का मैसेज था, अब जरा उनको बहुत सोचना होगा, सोच विचार करना होगा इस किस्म की जहराना हरकत करने से पहले कि ये वन साइडेड अफेयर नहीं होगा, इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकता है मुख्तलिफ तरीकों से, दिया जा सकता क्या है, दिया जाएगा, और उसमें ईरान अकेला नहीं होगा, ईरान के साथ बहुत एलाइज हैं, पाकिस्तान के अवाम से लेकर और आगे आप निकल जाइए तो बहुत साथी हैं, इसका क्योंकि वो एक सकाफत है, वो एक मुसलमानों की जो सिविलाइजेशन है उसमें ईरानियन कल्चर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप आर्ट देखिए, साइंसेस देखिए, मैथमेटिक्स देखिए, आप मेडिसिन देखिए, अपने सीना, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मोज़ेक है इस्लामिक सिविलाइजेशन, उसमें जो ईरानियन सिविलाइजेशन है उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, जहाँ अरबों का हिस्सा है वहाँ ईरानियों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह मुसलमान जो दुनिया के हैं वो इस तरह नहीं देखेंगे तमाशा कि एक इस्लामिक सिविलाइजेशन का अहम जुज है तो उसको अगर कोई खुदा न खासा कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि वो सारी इस्लामी सकाफत और इस्लामी जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर जब पहुंचेगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, एक जो करके उन्होंने दिखाई, एक सिम्बॉलिक ही कह सकते हैं, चूंकि वो कोई हथियार लेके नहीं गया था ड्रोन, उनका काम था मालूमात हासिल करना, लेकिन बहरहाल एक पैगाम जरूर था जो इजरायली कट्टर इजरायली हैं, जो जंगजू किस्म के जंग पसंद हैं, उनके लिए ये खासा पैगाम है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा। शकील शमसी साहब, जनाब हिजबुल्लाह की हालिया कामयाबी के बाद लबनान की हुकूमत ने हिजबुल्लाह की ताकत को अपनी ताकत करार दिया
जी।
और लबनान की दिफाई ताकत और तवानाई को, हिजबुल्लाह की दिफाई ताकत और तवानाई को लबनान की सलामती का जामिन करार दिया है। जब अगर हिजबुल्लाह की ताकत और तवानाई लबनान की हिफाजत और लबनान की सलामती की जामिन है, तो खुद लबनान के अंदर से जो बाज अनासिर कभी कभी ये आवाज़ उठाते हैं कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह किया जाए, उनके इस मुतालबे के बारे में आप क्या कहेंगे?
जी देखिए, ये मुतालबा अमेरिका की जो लॉबी है वो उठाती रही है हमेशा वहां पर, और वही लोग इस बात को बार बार कहते रहे कि हिजबुल्लाह को डीआर्म किया जाए और उनके गैर मुसल्लह करके उनके सारे हथियार रखवा लिए जाएं, फिर वहां पर अमन की गुफ्तगू की जाए। जाहिर बात है कि ये तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि इसराइल अमेरिका के हवाले से या अमेरिका के तवस्सुत से इस बात की कोशिश कर रहा है लगातार कि गैर मुसल्लह कर दिया जाए लबनान में इसको, हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह ही असल में लबनान की ताकत है, हिजबुल्लाह ही लबनान को बचा सकती है। लबनान की फौज में कोई ताकत नहीं, आपको पहले भी मालूम है कि लबनान में शाम की फौजें उसकी हिफाजत के लिए मौजूद रहती थी। 14,000 शामी वहां पर मौजूद थे एक जमाने में, जिनको बाद में हटाया गया रफीक हरेरी के कत्ल के बाद से। तो ये जो ताकत असल में, अगर लबनान को किसी ने गैर मफतूह करार दिया जा सकता, अगर उसके ऊपर कोई फतह नहीं हासिल कर सकता है, तो उसकी वजह सिर्फ हिजबुल्लाह है। और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का मतलब यह हुआ कि लबनान को खत्म करा दिया जाए, लबनान के हमेशा से खामोश कर दिया जाए। जाहिर बात है कि हिजबुल्लाह ने आज तक कभी भी लबनान के किसी झगड़े में अपने को शामिल नहीं किया, अंदरूनी मामलात में शामिल नहीं हुई। उसने जो भी प्रोटेस्ट किए या जो कुछ भी किया, बहुत ही शानदार तरीके से किए, हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे भी उसने किए, लेकिन उनमें असलहों का इस्तेमाल नहीं किया। उसने असलहे जब भी उठाए जालिम के खिलाफ उठाए, असलहे उसने जब भी उठाए इसराइल के खिलाफ उठाए। तो इसराइल चाहता यह है किसी सूरत से कि वहां पर जो अमरीका, जाहिर बात है कि लबनान में भी अमरीका नवाज लोग हैं और बहुत बड़ी तादाद में, और ईसाइयों की एक बड़ी तादाद है कि जो हाकिम है वहां पर वो भी अमरीका नवाज है, लेकिन उन बहुत से ईसाई ऐसे भी हैं कि जो अमरीका नवाज नहीं है, और उनको भी ये मालूम है कि अगर जिस दिन गैर मुसल्लह करने की कोई कोशिश की गई हिजबुल्लाह को, उस दिन खित्ते में ताकत का तवाजुन एकदम खत्म हो जाएगा और इसराइल एक गुंडे की तरीके से जो जी चाहेगा करेगा, क्यों जिस हवा में जिस फिजा में जी चाहेगा वो कब्जा करेगा और अपनी फौजें भेजेगा। आपको मालूम है 83 के 80 की अवाइल में उसने किस तरीके से फिलिस्तीनियों को निकालने के नाम पर जुनूबी लबनान पर कब्जा कर लिया था, किस तरीके से अपनी फौजें पूरी उतार दी थी, और कितने दिनों तक अगर वहां पर उस वक्त शिया रेजिस्टेंस ना शुरू हुआ होता तो भी वो आज तक वहीं गासिब होता, और वो जिस तरीके से जुलान की पहाड़ियां लिए बैठा है या और दूसरे इलाके लिए बैठा है, वो हटता नहीं वहां से। अगर वहां पर रेजिस्टेंस ना होता उस वक्त भी इसराइल को जुनूबी लबनान के मुसल्ला आवाम ने ही बाहर किया था, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस चलाया था, और उस वक्त हिजबुल्लाह इतनी ताकतवर नहीं थी, उस वक्त उसका ये आलम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो वहां पर शिया मुजाहमतकार थे उन्होंने ही इसराइल को बाहर निकाला था। तो अब गैर मुसल्लह करने की बात हिजबुल्लाह को जब आती है तो वो उसकी वजह क्या, जवाब क्या है, आखिर ये समझ में नहीं आता क्यों कह रहे हैं भाई। सिर्फ ये वजह है कि वो इसराइल के साथ लड़ सकता है, और एक ही ताकत पूरे मशरिक़ वुस्ता में सिर्फ दो ताकतें हैं जो इसराइल को आग दिखाकर बात कर सकती हैं, और एक है हिजबुल्लाह और एक है ईरान खुद। ईरान चूंकि वहां से दूर है, इस हिजबुल्लाह उसकी सरहदों पर है, और इस हिजबुल्लाह ने दिखाया कि किस तरीके से जालिम को मात दी जाती है। 2006 में आपको मालूम है कि 12 जुलाई को हमला हुआ था और 14 अगस्त तक वो लड़ाई चली थी, और उसमें एक दिन भी किसी दिन इसराइल के लिए ऐसा खुशायन नहीं आया कि जिसमें वो ये कह सकता कि आज हमने शिकस्त दे दी या आज हमने इनको फुला जगह फुला मुहाज के ऊपर हरा दिया। हर दिन कहते रहे कि हम ये करेंगे और इस तरीके से, और जबकि उसके बम्बार हर दिन में 100-100 असॉल्ट करते थे, 50-50 असॉल्ट करते थे, उसके बावजूद पूरे लबनान को वो जीतने में नाकाम रहे, और वो हिजबुल्लाह जो थी वही आखिर में कामयाब हुई और इसराइल को नहायती शर्मनाक हालात के साथ अपनी सरहदों में वापस जाना पड़ा।
जी प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब, जनाब आप क्या कहेंगे ये जो बाज़ अनासिर की तरफ से ये मुतालबा किया जाता है कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्ला किया जाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
सवाल ये है कि कौन मुसल्ला करेगा, किस में इतनी ताकत है कि उसको गैर मुसल्ला करे। ये प्रोपेगेंडे के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिका को अब ये मालूम होना चाहिए कि मशरिक़ वस्ता में हालात तब्दील हो चुके हैं। अब वो उनके जो एजेंट बैठे हुए थे पहले, जो उनके उनके लिए काम कर रहे थे, अब उनकी ताकत या तो ख़त्म हो गई है या वो खौफ में है। यानी मिस्र में जो तब्दीली आई और दूसरे इलाकों में जो तब्दीली आई कि वहाँ पर अवाम जो है वो अब खड़े हो गए हैं और वो अब अमेरिका की मनमानी उस इलाके में करने के ख़िलाफ़ है सख्त जो है, और जो अमेरिका के मुवाफिक डिक्टेटर्स हैं वो भी अब खौफ से से थथरा रहे हैं और वो नहीं जानते हैं कि अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो अब ये सवाल करना कि उसको गैर मुसल्ला कर लिया जाए एक फजूल सी बात है, एक प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके आगे इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर एग्री नहीं करेगी, दूसरी ये है कि भाई कौन उनको गैर मुसल्ला करने जाएगा वहाँ पर, जो है किसकी ताकत है जो करेगा। जो है अमेरिका खुद अब मुसीबत में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान से भाग रहा है और ड्रोन अटैक के जरिए जो है वो पाकिस्तान में कत्लाम कर रहा है, लेकिन खुद उसकी लोग जो हैं, अभी सर्वे हुआ अमेरिका में 75% लोग जो हैं अमेरिका के, अब वो नहीं चाहते हैं कि किसी और जंग में उनको झोंका जाए जो है, और इसराइल बगैर अमेरिका के ईमा के एक कदम नहीं ले सकता। तो अब वहाँ पर मसला जो है कि उनको मसला किया जाए या ये किया जाए वो किया जाए, ये तो एक फजूल अब बात है, सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको और अपने अंदरूनी सियासत के लिए इसराइल शायद इस्तेमाल करे इसको और शायद अमेरिका में भी इस्तेमाल हो ये, लेकिन इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। किसी ने कम अज़ कम यूरोप में तो किसी ने इस बात को अहमियत ही नहीं दी कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्ला किया जाए या किसी में करने की ताकत है, तो ये जाहिर करता है कि ये एक फजूल सा एक आर्गुमेंट है, एक फजूल सी बात उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सामने रख दी है, जिसकी कोई ना हिमायत होगी ना उसका कोई कोई मतलब निकलेगा। जो है हिजबुल्लाह जो है वो एग्जिस्ट करती है, उसको लेबनान की हुकूमत की हिमायत हासिल है और तमाम अवाम जो हैं सिवाय कुछ फैक्शन के जो सऊदियों के साथ हैं, ईसाई भी उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है ईसाइयों का भी हमास के साथ है। आपको याद होगा कि जब पोप वहाँ आए तो हमास ने कहा कि हम जो एक्शन लेना चाहते थे वो हमने पोस्टपोन कर दिया था सिर्फ इसलिए कि पोप जो है वो लबनान का दौरा कर रहे थे। तो ये जाहिर करता है कि वहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है ईसाइयों की भी वो हमास के साथ है, क्योंकि वो देखती है कि अगर लेबनान की कोई हिफाजत कर सकता है तो वो सिर्फ हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह जो है वो उनका अलमबरदार है, उनकी हिफाजत का वही उनके लिए करता है। उनके लोग जो हैं वो इंतहाई ईमानदार और कमिटेड हैं, जबकि दूसरे इलाकों में ये ऐसा मसला नहीं है। तो उसको कोई, मेरा ख्याल है ये एक फजूल बात होगी अगर इसराइल ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर फारूक हसना साहब। जनाब गासिब सहवनी हुकूमत अमरीका और उसके इत्तेहादी हिजबुल्लाह के असलहे और उसकी दिफाही ताकत को गैर कानूनी करार देते हैं, जबकि लबनान की हुकूमत, लबनानी अवाम, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे और अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट हिजबुल्लाह की ताकत और असलहे को गैर कानूनी करार नहीं देते, बल्कि हिजबुल्लाह की ताकत को लबनान की ताकत करार देते हैं। तो फिर हिजबुल्लाह और उसकी ताकत को गैर कानूनी कैसे कहा जा सकता है?
बात ये जी कि लबनान के जो मामलात हैं वो लबनान के लोगों ने तय करने हैं, बाहर से किसी ताकत ने नहीं करने या किसी मुल्क ने नहीं करने, और जो इजरायलीज हैं इनका तो किसी तरीके से जवाब बनता ही नहीं है कि वो अपने जो उनके हमसाया ममालिक हैं उनके अंदरूनी मामलात में इस किस्म की बात करें। वो लबनान वाले जाने, उनका काम जाने, लबनान की जो वहाँ पे बकायदा इंतखाबात होते हैं हम सब जानते हैं, वहाँ पे मुंतखब पार्लियामेंट है, कभी कभी कोई पार्टी जीतती है कभी दूसरी पार्टी जीतती है, उस पर हावी हो जाती है, तो वो और हिजबुल्ला वहां पे एक सियासी फोर्स भी है और उसे वो बातचीत भी करके रहते हैं। ये नहीं कि हिजबुल्ला वहां पे खड़े हुए कुछ सिविल वॉर लड़ रहे हैं उनके साथ, बाकायदा हुकूमत में भी शामिल होते हैं, कभी नहीं भी होते। तो यानी वो एक सियासी अमल का हिस्सा है उसका लबनान का, और वो लबनानी है। सबसे बड़ी बात है हिजबुल्ला है कौन, वो तो लबनानी है, वो लबनान के रहने वाले हैं, वो तो उनके शहरी हैं। वो कैसे करें ना करें अपने लोगों के साथ, किस तरह के उनके ताल्लुकात है, वो उनका जो अमल है, सियासी प्रोसेस है या सियासी जो ढांचा है उसके अंदर रह के वो सब कुछ होता है। अब बाहर से किसी को कहना कि तुम ये ना करो तो तुम वो ना करो, तो वो तो फिर अगर ये शुरू कर दी बाहर जाए बात, तो फिर बता देखो इसराइल की बैन अवी कानून की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो मैं मेरे एक भाई ने जो पहले कहा था भी, तो ये तो बात ही फजूल सी है और उसका कोई जवाब ही नहीं है इस तरह की बात भी करना। और ये भी उन्होंने कहा था उनको गैर मुसल्ला कौन करे, ये चीजें अपनी जगह पे। लेकिन अगर हम सिर्फ कानून की बात करें, बैन अवी कानून की बात करें, एक तो उनका जैसे मैंने पहले कहा कोई जवाब नहीं बनता दूसरे मामला, दूसरे ममालिक के जो सियासी और दूसरे मामला में दखल दे। दूसरी बात यह है कि खुद सबसे बड़ा वायलेटर बैन अवी कानून का तो इसराइल खुद है। तो आप खुद अगर कल्प्रेट हैं, खुद आप मुजरिम हैं, तो आप दूसरे को मुजरिम मुजरिम कहते हुए जरा अच्छा नहीं लगता और मुनासिब भी नहीं लगता। क्योंकि इन्होंने जो कब्जा किया हुआ है वेस्ट बैंक के ऊपर, गाजा के ऊपर, अकवाम मुत्तहिदा की आप करारदादें देखें, इनके अपने जो हवारी हैं अमरीका के अंदर, वो भी उनको एक हद आ जाती है, उनको भी कहना पड़ता है कि क्या कर रहे हो, पास आ जाओ, जो वो वहाँ पे सेटलमेंट उन्होंने वो बनाई हुई है अपनी। तो इसमें तो और फिर उसके बाद इन्होंने वो सीरिया शाम के इलाके पे कब्जा किया हुआ है और दुनिया जहान की ये वायलेशन करते हैं बैन अवी तो कानून की और खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम परवाह नहीं करते। और सबसे बढ़कर ये तो खैर बहुत बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी है जो वेस्ट बैंक और गाजा में ये कर रहे हैं। उसके बाद इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम देखिए आप, मतलब एक खुल्लम खुल्ला सारी दुनिया को पता है कि इनके पास एटॉमिक हथियार हैं और उस किस इशू पे वो बात करना मुनासिब नहीं समझते हैं, ना ही किसी दूसरा अगर कुछ करे उसको उसके ऊपर हर किस्म के वो इल्जाम लगाते हैं और इस चीज को वो दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर हम सिर्फ बैन अवी कानून की ही बात करें तो उनका कोई किसी किस्म का जवाब नहीं बनता। और दूसरा जैसे मैंने कहा कि अगर हम जमीनी हकायक भी देखें तो जमीनी हकायक से भी ये बात नहीं बनती कि एक लबनानी को आप कह रहे हैं कि गैर मुसल्ला करो, तो आप जब लबनानी भी नहीं है और वो उनका हिस्सा है उनके माशरे का। ये पहले भी बात हो चुकी जब अमेरिका वाले भी ये बात कहते थे कि इनको गैर मुसल्ला कर, या वो इस तरह बात करते थे जिस तरह के हिजबुल्ला वाले लबनान के नहीं है, ये बाहर से आए हैं। तो फिर वहां पे उनको बार बार ये कहा गया कि आप बात क्या कर रहे हैं, वो तो लबनानी है, वो तो लबनान के रहने वाले हैं, तो उनके आपस के मामलात हैं जो वो तय करते भी रहते हैं। यही बात नहीं वो तय नहीं करते, वहां को सिविल वॉर तो नहीं हो रही इस वक्त, तो वो सियासी अमल का हिस्सा है, सियासी ढांचे का हिस्सा है। तो इसलिए आप ये छोड़ते हैं, वो उनके ऊपर लबनानियों के ऊपर छोड़ते हैं, आप इस किस्म की कोई बात ना करें, आपके लिए मुनासिब भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं कोई किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए जैसे पहले भी कहा गया मैं उसको दोहराऊंगा अभी, कि दुनिया में किसी हल्के ने, किसी दुनिया के मुल्क ने इसको संजीदा लिया ही नहीं इस सारी चीज को, इसलिए कि ये एक अजीब सी चीज लगती है कि दूसरे मुल्क आप उनको कहें कि जी आप ये करें और वो करें तो आपको ऐसे आगे लेके चलना चाहिए अपने माशरे को। ये किसी का काम नहीं है, ये सिर्फ लखनानियों का खुद ही अपना काम है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल इसमें दो राय नहीं कि हिजबुल्लाह के चीफ, हिजबुल्लाह के सिपाही और हिजबुल्लाह के तमाम रहनुमा और हिजबुल्लाह के तमाम अराकीन लबनानी हैं, लबनान में रहते हैं, और लबनान के अवाम, लबनान के अवाम के नुमाइंदे, लबनान की पार्लियामेंट, लबनान की हुकूमत हिजबुल्लाह की ताकत को जब लबनान की ताकत और अपनी ताकत करार देती है तो दुनिया की किसी भी ताकत को हिजबुल्लाह की ताकत पर अंगुश्त नुमाई करने का हक हासिल नहीं है। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज़।